लिंग भेद की राजनीति में जकड़ी औरत। पृष्ठ संख्या 23। दुनिया के इतिहास में आज भी औरत, वह चाहे पश्चिम के विकसित राष्ट्रों की हो अथवा पूरब के विकासशील राष्ट्रों की, पितृसत्तात्मक समाज में वह उपनिवेश ही रही है। वह लिंग भेद की राजनीति में बुरी तरह से जकड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भी समाज का औरत के बारे में दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक, उपनिवेशवादी एवं उत्पीड़नकारी है। इनवर्टेड कॉमा ओपन, विकसित देश हो या विकासशील देश, स्त्रियों के बारे में उनका व्यवहार कमोवेश एक जैसा ही है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, औरत वह किसी भी राष्ट्र की क्यों न हो, किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, समुदाय, रंग की क्यों न हो, उसकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। पश्चिम में भी वहां की जागरूक स्त्रियों ने पितृसत्तात्मक समाज के अंतर विरोधों, विरोधाभासों के खिलाफ कितना ही नारीवादी परिप्रेक्ष्य से संघर्ष क्यों न किया हो, लेकिन वहां भी जिस प्रकार उनके साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न होता है, उससे उनकी सामाजिक स्थिति और लिंग भेद की राजनीति को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। स्त्री समाज पर निरंतर बढ़ता जा रहा दमन, उत्पीड़न, अत्याचार, हत्याएं, आत्महत्याएं, क्या यही सिद्ध नहीं करती कि आज भी पितृसत्तात्मक समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति उत्पीड़ितों, उपनिवेशों जैसा ही है? आखिर क्यों पितृसत्तात्मक समाज उनके प्रति इतना हिंसक, अमानवीय, अभद्र एवं असंवेदनशील क्यों रहा है? स्त्री समाज के प्रति हमारी इतनी असंवेदनशीलता क्या यही नहीं प्रमाणित करती कि हम कितने हिंसक, असभ्य, बर्बर लोग हैं? उनके प्रति संवेदनात्मक पक्ष का बेहद कमजोर होना लिंग भेद की राजनीति का हिस्सा है। जो समाज लिंग भेद की राजनीति में जकड़ा हुआ, असंवेदनशील, हिंसक होता है, वह कभी भी विकसित तथा 21वीं शताब्दी का समाज नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी लिंग भेद की राजनीति को देखा जा सकता है, जहां नारीवादी आंदोलन इतने प्रखर हैं, लेकिन फिर भी वहां के पुलिंगी पितृसत्तात्मक विमर्श इस विवाद को अपने अनुशासन में ढाल रहे हैं। देखने वाली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वहां के नारीवादी पुलिंगी विमर्श के वर्चस्ववाद के साथ पृष्ठ संख्या 24 कैसे दो चार होते हैं अथवा उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिलहाल तो यही लगता है कि पुलिंगी विमर्श के वर्चस्ववाद ने अपने स्त्री विरोधी सामाजिक व्यवहार को स्पष्ट कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। जब कोई औरत पुरुष मूल्यों को कटघरे में खड़ा करती है, उनके अंतर विरोधों, वर्चस्ववाद को सामने लाकर उसे खारिज करती है, तो पुलिंगी विमर्शों का उनके प्रति असंवेदनशील, हिंसक होना कोई नई बात नहीं है। उन्हें अनुशासित, नियंत्रित, अनुकूलित करना पितृसत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी लिंग भेद की राजनीति का परिणाम कहा जा सकता है, ताकि उनके बढ़ते कदमों को कैसे नियंत्रित किया जा सके। दरअसल औरत को इस प्रकार नियंत्रित, अनुकूलित करना बेहद पिछड़े हुए सामंती समाज में ही नहीं, अपितु बेहद विकसित राष्ट्रों के सभ्य समाजों में भी रहा है। यौन उत्पीड़न, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न पारिवारिक क्षेत्रों से सार्वजनिक क्षेत्रों तक मौजूद है। जो भी जागरूक स्त्री पितृसत्तात्मक समाज के इन पुरुष निर्मित मूल्यों, वर्जनाओं, वर्चस्व, प्रभुत्व को चुनौती देने का साहस बटोरती है, उसके साथ पितृसत्तात्मक शक्तियां वही बर्ताव करती हैं जो दुनिया भर की पीड़ित स्त्रियों के साथ हो रहा है। फिर वह चाहे निम्न वर्ग की औरत हो या उच्च वर्ग की औरत, उनकी स्थितियों, सुविधाओं में अंतर भले ही हो, लेकिन सामाजिक व्यवहार तो कमोवेश एक जैसा ही होता है। जेसिका लाल की खुलेआम हत्या, नैना साहनी तंदूरी कांड, मोनिका लेविस की विवाद, क्या हमारे हिंसक सामाजिक व्यवहार की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां नहीं है? आज भी यदि सामाजिक व्यवहार में कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती तो नारीवादी आंदोलनों की विफलता है, या पुलिंगी विमर्श का वर्चस्व जो नारीवादी विमर्शों को खुलेआम रौंद रहा है। इसका मुख्य कारण है स्त्री के प्रति गहरी असंवेदनशीलता, अभद्रता, असमानता का भाव, जिसके मूल में निहित है उसे उपनिवेश अधीन बनाकर रखने की लिंग भेद की राजनीति। सामंती व्यवस्था से लेकर उत्तर आधुनिक समाज दोनों में ही स्त्री के प्रति असंवेदनशीलता, अभद्रता, असमानता, क्रूरता स्पष्ट दिखाई देती है। औरत के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मक्खन लगाकर तंदूर में भूनना, उसे गोली मार देना, तलाक दे देना, जीने के मानवीय अधिकारों से वंचित कर देना 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ना है या बर्बर शताब्दी की ओर लौट जाना है। क्या इन घटनाओं का स्त्री के प्रति हमारे सामाजिक व्यवहार के साथ कोई संबंध नहीं है? इस सामाजिक व्यवहार की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है? पितृक राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है स्त्री को उसके स्वत्वाधिकारों से वंचित रखना। पृष्ठ संख्या 25। उसे स्वत्वहीन, अस्मिताहीन, रीढ़ विहीन, आवाजहीन बनाकर रखना, ताकि वह कहीं रीढ़ के बल पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर, आत्मसजग, जागरूक होकर उसके वर्चस्ववाद को चुनौती न दे डाले। अपराधीकरण की सबसे अधिक शिकार हुई है औरत। हिंसा, अभद्रता, अमानवीयता को झेलती झेलती वह लहूलुहान छत विछत हो चुकी है। उसका शरीर कांटों से भिंदा हुआ है। दरअसल उसे रीढ़ विहीन, आवाजहीन, स्वत्वहीन, अस्मिताहीन करना पितृ सत्तात्मक समाजों की सबसे बड़ी जरूरत रही है। उसकी यही कोशिश रही है कि स्त्री कहीं जागरूक स्वावलंबी ना हो जाए। वह उसे जागरूक, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली क्यों बनने देता? वह क्यों अपनी सांस्कृतिक वर्चस्ववाद के लिए खतरे की स्थितियां पैदा करता? हालांकि यह भी पितृसत्तात्मक समाज की औरत की आजादी के बारे में गहरे भय, आशंका, असुरक्षा से भरी हुई गलत धारणा ही है। पैराग्राफ चेन। स्त्री को आज भी अंतिम उपनिवेश कहा जा रहा है तो क्यों? दुनिया की आधी आबादी आज भी उपनिवेश अन्य है। उनकी औपनिवेशिक दशा को कायम रखने में पितृसत्तात्मक समाजों की अहम भूमिका रही है। स्त्रियों के उपनिवेशीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक नियंत्रण, निर्देशन, चेतना के अनुकूलन, लिंग भेद की राजनीति, लिंग प्रभुत्व ने ही उन्हें उपनिवेश बना डाला। प्रभुत्व की यही इच्छा थी कि आधी आबादी उसके संपूर्ण नियंत्रण, निर्देशन, अनुकूलन में रहे, उन पर पुरुषों का लिंग प्रभुत्व बना रहे। पुरुषोत्तम अग्रवाल का तर्क सही है कि जो वर्ग समाज को चलाए रखने के लिए उत्पादन करते हैं, रचना करते हैं, वे सतत प्रताड़ना के बिना काबू में नहीं रखे जा सकते। इस प्रताड़ना का सबसे भीषण स्वरूप है स्वयं इन उत्पादक और उत्पीड़ित वर्गों के मन में यह बैठा देना कि वे उसी सलूक के लायक हैं जो उनके साथ हो रहा है। इसीलिए वर्चस्वशाली सत्ता उत्पीड़ितों को सतत धिक्कार की हृदयहीन धुंध में रखती है। इसे कहते हैं उपनिवेशवादी मानसिकता, विचारधारा जो अपने उपनिवेशों की चेतना का इतना अधिक आंतरिक उपनिवेशीकरण कर देती है कि उसके उपनिवेश खुद ब खुद औपनिवेशिक दासता के शिकार हो जाते हैं। जैसे दलित, उत्पीड़ित स्त्रियां गुलामी में ही आनंद अनुभव करती है। उपनिवेश स्त्रियां अन्य बने रहने में ही अपनी कुशलता समझती है कि वे स्वतंत्रता लेकर क्या करेंगी। उन्हें अपनी स्वतंत्रता से आशंकाओं भरा भय दिखाई देता है। पाउलो फ्रेरा इसे उत्पीड़ितों का स्वतंत्रता के प्रति आशंका भरा भय कहते हैं। क्या आज बहुत सी स्त्रियां अपनी गुलामी में ही आनंद नहीं ढूंढती? कृष्णा सोबती की स्त्री नायिकाएं इसी गुलामी के आनंद को ही अपनी कुशलता समझती है। क्या गुलामी का आनंद? पृष्ठ संख्या 26। भारतीय स्त्री की विडंबनापूर्ण वास्तविकता नहीं है। भारतीय नारी के प्रति उनका यह दहकता हुआ वास्तव है कि कैसे वे वही कुछ करती है जो उत्पीड़क वर्ग उनसे उपेक्षाएं करता है। पितृक सत्ताओं ने स्त्री को हाशियाकृत, उपनिवेशीकृत करने के लिए उपनिवेशीकरण के जटिल विविध रूप भी गढ़े हैं, ताकि वह अपनी अस्मिता के प्रश्नों के बारे में सोच ही न सके। हाशियाकृत लोगों स्त्रियों की इस औपनिवेशिक दशा स्थिति को तोड़ने के लिए उनमें स्वत्वाधिकारों की चेतना विकसित करने की जबरदस्त कोशिश की है, ताकि हाशियों को तोड़ा जा सके। स्त्री अब तमाम संशयों, आशंकाओं को तोड़कर अपने अधिकारों, सत्व, अस्मिता को खोजने लगी है। इस धरती पर पांव टिकाना सीख रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी निरंतर बढ़ती जा रही उपस्थिति उनके छिपे पोटेंशियल्स को व्यक्त करने लगी है। सवाल तो यही है कि स्त्री जब उच्च अधिकारी होती है, किसी संस्थान के सर्वोच्च पद पर आसीन होती है, तब उसका व्यवहार नारीवादी परिप्रेक्ष्य जैसा होता है या मर्दनुमा। दूसरे शब्दों में वे पितृसत्तात्मक अनुशासन में ढलकर लगभग वैसे ही व्यवहार करती हैं जैसे पुरुष करते हैं। उनका व्यवहार कमोवेश पितृसत्तात्मक संरचनाओं की ही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है। अर्थात उपनिवेश उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं जिस प्रकार के व्यवहार की उनसे उत्पीड़क वर्ग अपेक्षाएं रखता है। इसे ही कहते हैं उपनिवेशों की मानसिकता का पूरी तरह से उपनिवेशीकरण या नियंत्रण, यथास्थितिवाद को पूरा समर्थन। स्त्रियों, लड़कियों को उनके माता पिता से जो शिक्षा संस्कार मिलते हैं, वह ज्ञान शिक्षा संस्कार भी उपनिवेशित ही होते हैं। उस ज्ञान संस्कारों का आयोजन उपनिवेशों की जरूरत के अनुसार किया जाता रहा है। कहना न होगा कि इस उपनिवेशित शिक्षा, ज्ञान, संस्कार, चेतना ने भारतीय समाज के असमानता परक सामंतवादी अमानवीय औपनिवेशिक ढांचे को न केवल मजबूती प्रदान की है, बल्कि उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया है। इसी छद्म औपनिवेशिक संस्कारशीलता ने स्त्री के मन में अपनी अस्मिता के प्रश्नों को लेकर गहरा भय, आशंका, असुरक्षा, हीनता की पराश्रित भावना को जन्म दिया है कि उनका एकमात्र लक्ष्य है उपनिवेशित मानसिकता, दासता में जीना। उपनिवेशों का ज्ञान ही उपनिवेशित है, जो उन्हें निरंतर अनुकूलित, अनुशासित, निर्देशित करता रहता है। तो उपनिवेश यथास्थितिवाद में रहना अपनी अस्तित्वगत जरूरत समझने लगते हैं। यही उपनिवेशवाद की उत्पीड़नकारी विचारधारा है। पैराग्राफ चेंज। जब उपनिवेशों को अपनी उपनिवेशित स्थिति, मानसिक गुलामी का बोध होता है, पृष्ठ संख्या 27, तभी इतिहास में हाशिए टूटने लगते हैं, नए विमर्श बनने लगते हैं। दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श, इनका एकाएक उभार ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि उपनिवेश अब अपनी आंतरिक और बाहरी औपनिवेशिकता से मुक्ति चाहने लगे हैं। औपनिवेशिक सामाजिक ढांचे स्त्रियों, लड़कियों को अपने निश्चित साँचों में ढालते हैं तथा उन्हें निर्धारित भूमिकाएं निभाने के लिए अनुरूप चलाने के लिए निर्देशित करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज स्त्रियों को लिंग भेद की राजनीति के तहत उन्हें निश्चित साँचों खाँचों में ढालने के लिए अनुकूलित करता रहता है। स्त्री विमर्श पुलिंगी संरचनाओं के खिलाफ है, क्योंकि वह पक्षपातपूर्ण, एकांगी और स्त्री विरोधी है। पैराग्राफ चेंज। सांस्कृतिक वर्चस्ववाद ने आज तक स्त्रियों, उपेक्षितों को हाशियों पर ही रखा है। आज तक उसके रहे उपनिवेश अब अपना अलग विमर्श बनाने लगे हैं, हाशिए टूट रहे हैं। इसीलिए वर्चस्ववादी संस्कृति का वर्चस्व डगमगाने लगा है। हाशियों की दुनिया उसकी उपनिवेश बनी रहे, यही उसकी जबरदस्त कोशिश रही है। इतिहास ने सबसे विपरीत स्थिति तो यह कर दी है कि वर्चस्ववाद संस्कृति के अंतर्विरोध अब खुलकर सामने आने लगे हैं। वंचितों, स्त्रियों का अपने विमर्श बनाना, अपने स्वत्वाधिकारों के प्रति जागरूक होना, अपनी अस्मिताओं के लिए संघर्ष करना ही नए विमर्शों का उभारना है। अब वर्चस्वी संस्कृति लाख चाहे तो भी इन विमर्शों के उभार को नहीं रोक सकती। वे अब वर्चस्ववादी संस्कृति के अंतर्विरोधों को न केवल उभारने लगी है, अपितु उन पर कड़ी चोटें भी कर रही है। उनके अंतर्विरोधों का साफ साफ सतह पर उभर कर सामने आना, उनकी तीखी आलोचना होना, स्त्रीत्ववादी विमर्शों का उभार क्या ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं है? वे अब अपनी जगह जमीन तलाशने लगी है। आज तक तो उनके लिए कोई जगह थी ही कहां। उनके संसार अलिखित, उपेक्षित था। अब यथास्थिति टूटने लगी है। उपेक्षितों में अपने स्वत्वाधिकारों की चेतना का विकास दुनिया की परिवर्तनकामी ऐतिहासिक घटना है। स्त्री अस्मिता के प्रश्नों को लेकर जिस प्रकार नए नए विमर्श बनने लगे हैं, स्त्रियां अब अपने अधिकारों की चेतना से सामने आ रही है। पितृक सत्ता के अंतर विरोधों को जैसे सामने लाया जा रहा है, उसने स्त्री मुक्ति के नए नए रास्ते खोल दिए हैं। सवाल तो यह है कि क्या दुनिया की आधी आबादी हाशिए पर है, यथास्थिति में है? क्या उनको अपने स्वत्व अस्मिता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें मानवाधिकारों की गरिमा से वंचित ही रखा जाएगा? वर्चस्ववादी संस्कृति की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि उसके उपनिवेश अब अपने अधिकारों के बारे में जागरूक संगठित क्यों हो रहे हैं? पृष्ठ संख्या 28। वे उसके बराबर या उच्च होने क्यों लगे हैं? वे अब अच्छे घरों, अच्छी स्थितियों में क्यों रहने लगे हैं? उपेक्षितों, वंचितों के बारे में भी समाज की मानसिकता लगभग ऐसी ही रही है। स्त्रियों के बारे में भी पितृसत्तात्मक समाज की लगभग यही दृष्टि रही है कि उन्हें किसी न किसी तरह दबाकर नियंत्रण में रखा जाए। मृणाल पांडे, किरण बेदी, नलिनी सिंह क्या स्त्री विमर्श को प्रखर नहीं बना रही? एंगल्स ने इन्वर्टेड कॉमा में परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि वहां सभ्यता का वर्ग को लगभग सारे अधिकार देकर दूसरे वर्ग पर लगभग सारे कर्तव्यों का बोझ लादकर अधिकारों और कर्तव्यों के भेद एवं विरोध को इतना स्पष्ट कर देती है कि मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी उन्हें समझ सकता है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने स्त्री की चेतना को नियंत्रित निर्देशित करना शुरू किया और आज भी यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जारी है। धीरे धीरे औरत पितृसत्तात्मक नियमों, कानूनों, सिद्धांतों, जीवन मूल्यों को झेलते झेलते इतनी अभ्यस्त हो गई है कि उसे निभाना उसने अपना पुनीत धर्म कर्तव्य समझ लिया है। अर्थात उत्पीड़न के नियमों साँचों में वह इतनी ढल गई है या ढाल दी गई है कि अब उन खाँचों साँचों से बाहर निकल ही नहीं पा रही। उन पितृक खाँचों साँचों को तोड़ना जैसे उनके लिए जबरदस्त भय, खतरा, असुरक्षा पैदा करता है कि यदि वे उन खाँचों में ढलने से इनकार करेंगी तो जैसे समाज में आदर्श स्त्री ही नहीं रहेंगी। इसी भय, असुरक्षा, आशंका के कारण स्त्रियां पैतृक अनुशासन में इतनी ढल गल चुकी हैं कि उस वर्चस्ववाद से निर्देशित नियंत्रित हो रही है। ऐतिहासिक प्रक्रिया ने ही उन्हें उत्पीड़ित, निर्देशित, नियंत्रित होना सिखा दिया है। पितृसत्तात्मक अनुशासन के सामने स्वत्वहीन, वाणीहीन, अस्मिताहीन, भोग विलास, शोषण दमन की वस्तु मात्र बनकर रह गई। उन्हें इस ऐतिहासिक प्रक्रिया ने आत्मनिर्भर, सजग, जागरूक होने ही नहीं दिया। पितृक कर्तव्यों का पालन करना ही स्त्री धर्म बन गया। पितृक अनुशासन के नियमों का जितनी निष्ठापूर्वक पालन करती वह उतनी ही आदर्श, कर्तव्य परायण, अच्छी, संस्कारशील स्त्री समझी जाती। क्या आज का 21वीं सदी का सुसभ्य उत्तर आधुनिक शिक्षित समाज भी स्त्री से इन्हीं पितृक जीवन मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों के दृढ़ पालन की मांग नहीं करता? आत्मसजग, चेतन, रीढ़ के बल पर खड़ी स्वत्वाधिकारों के प्रति जागरूक स्त्रियों को आज का पढ़ा लिखा समाज कितना पसंद करता है? इस पसंदगी नापसंदगी का क्या कोई सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? क्या यह सामाजिक व्यवहार बनाम स्त्री के प्रति समाज के हिंसक दृष्टिकोण, क्रूर व्यवहार का मुद्दा नहीं है? दृष्टिकोण व्यवहार पृष्ठ संख्या 29, यानी कि स्त्री विरोधी दमनकारी दृष्टिकोण। औरत के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक असंवेदनशीलता को समझना और उस असंवेदनशीलता को तोड़ना, उनके प्रति मानवीय संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना, क्या आज इस सती का सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न नहीं है? स्त्री विमर्श ही इस लिंग भेद की राजनीति के अंतर विरोध को सामने ला सका है कि उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण व्यवहार में वह मानवीय परिवर्तन क्यों नहीं आ सका है। साँचों में ढालने वाले लोगों की मूल चिंता यही रहती है कि यदि औरत आजाद हो गई तो उसके हाथों से निकल जाएगी। इसीलिए वह उनसे यही अपेक्षाएं रखता है कि वे उस पुरुष मूल्यों के अनुशासन की पूरी निष्ठा एवं तन्मयता से पालन करें, एक आदर्श भारतीय स्त्री बनने होने का प्रमाण दे। जो नहीं दे पाती, उनके आचरण को पैतृक नैतिकता के संदिग्ध चौखटे से देखा जाता है। अपने वजूद के लिए संघर्ष करने वाली आत्मसजग विश्व चेतस औरतों को समाज टेढ़ी निगाहों से ही देखता है। उसे संस्कारहीन, चरित्रहीन, मर्यादाहीन, दिशाहीन कहा जाता है। क्या यह पितृक नैतिकता मर्यादा नहीं है? इस पसंदगी नापसंदगी के पीछे गहरी सांस्कृतिक राजनीतिक अर्थ है कि पुरुष स्त्री से क्या और कैसी अपेक्षाएं रखता है और क्यों। वह स्त्री अस्मिता स्वतंत्रता का कट्टर विरोधी है। आज भी संसद में जब 33% की बात उठती है तो तमाम पितृसत्तात्मक शक्तियां उसका जबरदस्त प्रतिरोध करती है। वह अपना राजनीतिक वर्चस्व प्रभुत्व खोना नहीं चाहता, अतः वह क्यों चाहेगा कि स्त्रियां प्रभुता में आए और उनकी राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता विकसित हो। वह उन्हें क्यों समानाधिकार देगा? उनकी चिंता तो यही है कि आज 33% तो कल 50% की मांग उठेगी। जब दुनिया की आधी आबादी उनकी है तो उनका क्या अपनी दुनिया पर कोई अधिकार नहीं? आधी दुनिया अब अपनी जगह अधिकार वजूद तलाशने लगी है। आधी दुनिया अब जागने लगी है। अभी तो उसने आंखें मली है, नींद से जागी है। पितृक सत्ताएं उनकी राजनीतिक उपस्थिति के खिलाफ है। इसीलिए नारी मुक्ति, नारीवादी विमर्श, नारीवादी राजनीतिक नेतृत्व की बातें उनके गले में तीखे कांटे की समान अटकी हुई है। एक ओर उन्हें आवाजहीन, अस्मिताहीन करने की साजिशें चल रही हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने पुरुष मूल्यों, वर्जनाओं, प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठानी प्रारंभ कर दी है। पुलिंगी विमर्श स्त्री विमर्श को उठने नहीं देना चाहता। इसीलिए नारीवादी विमर्श के खिलाफ प्रचार अभियान छेड़ा जा रहा है कि ये सभी पश्चिम की बिगड़ी संस्कृति की औरतों के विचार है। क्या सिमोन द बोवार, किट मिलेट, बेटी फरिडन, जूलिया क्रिस्टिविया, जुठित बटलर के नारी विमर्श दिशाहीन है? पृष्ठ संख्या 30। क्या तस्लीमा का नारीवादी विमर्श अप्रासंगिक है, जिसने पितृक सत्ताओं, मुल्लाओं, पंडितों, धर्माचार्यों की धज्जियां उड़ा दी है? क्या कृष्णा सोबती का नारी विमर्श नारी मुक्ति की तलाश नहीं करता? इन लेखिकाओं के सोचने रचने के तरीकों पर, उनकी नारीवादी दृष्टि पर जो तीखे आक्रमण हो रहे हैं, उनके पीछे भी लिंग भेद की पितृसत्तात्मक दृष्टि काम करती है। यह लिंग भेद सदियों से उसी प्रकार काम कर रहा है जैसे भारतीय समाज में जाति भेद, पश्चिम में रंग भेद, वर्ग भेद काम कर रहा है। अभी इस लिंग भेद की राजनीति के खिलाफ औरतों ने आवाज उठाई है, उस हास्यकृत संसार को छिन्न भिन्न किया है। स्त्री मुक्ति संघर्ष का एक नया शास्त्र नारीवादी विमर्श का विकसित होना भी ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य समीक्षा जैसे अनेकानेक ज्ञानानुशासन नारी मुक्ति संघर्ष पर नए नए विमर्श बना रहे हैं। नारीवादी विमर्शों ने ही पितृसत्तात्मक समाज की तीखी आलोचना करते हुए उन मजबूत खांचों को प्रश्न चिन्हित किया है जो सदियों से उन्हें अनुशासित, निर्देशित, अनुकूलित करते आए हैं। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। साहित्य आलोचना की दुनिया भी बहुत गहरे स्तर पर लिंग भेद की राजनीति की शिकार रही है। नारीवादी विमर्श ने उस पर भी जबरदस्त सवाल खड़े किए हैं। पितृक प्रतिमानों की समीक्षा की जा रही है, उन्हें पुनर्भाषित किया है तथा पुरुष सत्ता की एकांगी, पक्षपातपूर्ण, पुलुंगी सोच पर प्रश्न खड़े किए हैं। यही नारीवादी विमर्श की प्रासंगिकता है। पैराग्राफ चेंज। स्त्रियों के प्रति हमारा व्यवहार गैर बराबरी पूर्ण इसलिए भी रहा है क्योंकि अभी तक सामंती मानसिकता नहीं टूटी है। पारिवारिक स्तर पर आज भी उनके साथ सामंती किस्म का क्रूर व्यवहार होता है। इतना ही नहीं, जो लोग मंचों पर नारी मुक्ति का प्रचार करते हैं, वही लोग अपने घरों में स्त्री के साथ बर्बरतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण सामंती व्यवहार करते हैं। भारतीय समाज में कदम कदम पर ऐसे तीखे विरोधाभास मौजूद है जिनके कारण स्त्रियों के प्रति हमारा व्यवहार पक्षपातपूर्ण, हिंसक एवं उत्पीड़नकारी रहा है। पितृ सत्तात्मक समाज ने उनके लिए ऐसे मूल्य नैतिक सिद्धांत सुनियोजित ढंग से गढ़े हैं जिनमें आजीवन उनकी बेटियां वधुएं ढलती गलती रहती है। सदियों से औरतें इन रीति रिवाजों परंपराओं के नाम पर पितृक मूल्यों के सांचों में जकड़ दी जाती है। इसी प्रक्रिया में पितृक सत्ताएं उसकी चेतना का अनुकूलन निर्देशन कर रही है। पुरुष उन पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन औरतें न तो प्रभुत्व चाहती हैं और न ही वर्चस्व, अपितु वे तो अपने स्वत्वाधिकारों, अस्मिता, गरिमा को चाहती हैं, ताकि उनके साथ जो पक्षपातपूर्ण, अछूतों, उत्पीड़कों जैसा हिंसक असभ्य व्यवहार होता है वह न हो। पृष्ठ संख्या 31। उनमें परस्पर सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना हो सके। पुरुष की स्त्री दृष्टि और स्त्री की दृष्टि में यही मूलभूत अंतर है। इसी दृष्टिकोण के अंतर ने ऐसी दरारें विकसित की है। हम स्त्री धर्म की बातों तो खूब करते हैं, लेकिन पुरुष धर्म की क्यों नहीं। इससे भी बड़ा यदि कोई धर्म है तो वो है मानव धर्म, जो आज अनुपस्थित है। हमारा समाज जिस दिन स्त्रियों के प्रति हिंसा, असभ्यता, अभद्रता, बर्बरता को त्याग कर उनके प्रति मानवीय संवेदनशील हो जाएगा, उसी क्षण हमारा समाज समतामूलक मानवीय संबंधों की गरिमा से महक खिल उठेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है उनके प्रति संवेदनात्मक मानवीय समतामूलक दृष्टिकोण विकसित करना और उनके स्वत्वाधिकारों को छीनने, उन पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व स्थापित करने का अर्थ है उनके प्रति गहरी असंवेदनशील एवं लिंग भेद की राजनीति को बनाए रखना। पैराग्राफ चेंज। स्त्री को उपनिवेश बनाकर रखना पितृक समाज की नैतिक मर्यादा और वर्चस्व से जुड़ा हुआ है। पितृक नैतिकता सदा यही कहती आई है कि पशु ढोल शूद्र नारी की ताड़ना अनिवार्य है, अर्थात इन पर अपना नियंत्रण वर्चस्व बनाए रखो। जहाँ तक पक्षपातपूर्ण सामाजिक व्यवहार का प्रश्न है, हर शिक्षित प्रगतिशील समझे जाने वाले लोगों में भी स्त्री को लेकर सामंती मानसिकता मौजूद है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का कहना सही है कि नारी मुक्ति के सवाल को सजग रूप से राजनैतिक एजेंडा पर लाया जाए। सामाजिक न्याय का संघर्ष राजनीतिक सत्ता के संघर्ष तक सीमित नहीं है, यह संघर्ष परंपरागत सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ है। स्त्री और शूद्र को पशु के समकक्ष रखने वाली मर्यादा का प्रतिवाद करते हुए मर्यादा की ऐसी अवधारणा गढ़नी है जो पशु के साथ भी मानवीय व्यवहार करे। ऐसी मर्यादा प्रतिशोध के प्रस्थान बिंदु से नहीं बल्कि प्रेम की गंगोत्री से आरंभ होगी। पितृ सत्तात्मक समाज उसे नारीत्व, मातृत्व, सतीत्व की शिक्षा एवं संस्कार देता है। यह कैसी सीख है, जहां उसे हर बर्बरता, अश्लीलता, असभ्यता, अस्वस्थता के साथ समझौता करना सिखाया जाता है। जब तक औरत इस तरह की उत्पीड़नकारी सेंसरशिप उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह नहीं करती, तब तक वह लोहे की जंजीर में जकड़ी रहेगी। तस्लीमा नसरीन का कहना सही है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नारी यह दुनिया तुम्हारी है, इस दुनिया में तुम अपनी इच्छा से जियो। यह दुनिया यदि एक नदी है, तुम उस पूरी नदी में तैरती रहो। यह दुनिया यदि एक आकाश है, तुम पूरे आकाश में विचरण करती रहो। जीवन यदि तुम्हारा है, जो दरअसल तुम्हारा ही है, तो वह जीवन तुम जैसी इच्छा हो जियो। नारी तुम अपना हक खुद हासिल करो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह है औरतों के बारे में एक निर्भीक विवेक चेतना संपन्न जागरूक औरत के क्रांतिकारी विचार, जो उनकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं एवं ला भी रहे हैं। इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जब कोई भी व्यक्ति स्थापित विचारों, यथास्थितिवाद, वर्चस्ववाद को तोड़ता है, उसके अंतर्विरोध विरोधाभासों को सामने लाने की हिम्मत करता है, तो उसे जबरदस्त विरोधों का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह का विरोध दमन तस्लीमा नसरीन जैसी संघर्षशील स्त्रियों को करना पड़ रहा है। लिंग भेद में जकड़े हुए स्त्री विरोधी समाज की यही तो भयानक विडंबना एवं वास्तविकता है, जिसका सामना तक करने का साहस पितृ सत्तात्मक समाज के पास नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्त्रियों ने स्वयं स्त्री विमर्श के लिए स्वत्वाधिकारों की चेतना के विकास के लिए सदियों पुरानी तड़प से भरी हुई चुप्पी मौन को वाणी दी है। वह अपने दबे कुचले अनुभवों को वाणी देने लगी है। पितृ सत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी चिंतातुर बौखलाहट इसी प्रक्रिया की उपज है कि स्त्री विमर्श क्यों, जहां लिंग भेद की राजनीति में जकड़ा हुआ अशिष्ट असभ्य एवं बर्बर समाज होगा, वहीं स्त्री विमर्शों का विकास भी अनिवार्य रूप से होगा। समाप्त।